नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी के लिए आज के पॉडकास्ट में मैं पूजा प्रसाद आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महाभारत के संजय के पास थी वह दिव्य दृष्टि कि धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे उन्होंने युद्ध का पूरा हाल सुनाया। आज के दौर में हम सब भी धृतराष्ट्र हो चुके लगते हैं। कई चीज़ें आँखों के सामने से गुजर जाती हैं, लेकिन हम उसका मर्म पकड़ नहीं पाते। शुक्र है कि इस वक्त में भी हमारे पास हमारे अपने संजय हैं। संजय जो हमें ऐसे मर्म खोज खोज कर दिखलाते चलते हैं। यह संजय खरा सोना है, नाम भी है संजय कुंदन। इनकी कविताओं में आपको मानवीय ऊष्मा मिलेगी, जीवन की स्निग्ध धारा मिलेगी और अपने आप से बहस करता हुआ एक शख्स मिलेगा। संजय कुंदन के बारे में मैं कुछ कहूँ, इससे बेहतर उनके बारे में इनकी कविताएँ कहेंगी। पेश है आज संजय कुंदन की कुछ रचनाएं। पहली कविता का शीर्षक है दिल्ली। मैं दिल्ली से क्यों नाराज हूं? मेरा दांव पर लगा ही क्या है जो मैं हार जाऊंगा, और मैं ऐसा क्या लेकर आया जो लूट लिया जाऊंगा, निचोड़ लिया जाऊंगा। यही क्या कम है कि मैं यहाँ उन लोगों के बीच हूं जो मुझसे भी ज्यादा खरोंचे लिए आए यहाँ। दिल्ली हम लोगों के लिए रात की आखिरी बस थी, जिसके पीछे दौड़े हम पूरी ताकत के साथ और सवार हो गए किसी तरह, भीड़ में कुचले जाने और बाहर फेंक दिए जाने का जोखिम उठाकर। इस बस के छूट जाने का मतलब था जिंदगी के अंधेरे बियाबान में खो जाना। पर इस बात की खुशी भी क्यों मनाएं कि हम चले आए दिल्ली, बहुत से लोग तो नहीं आ पाए। अक्सर हमसे कहा जाता है कि आप जिसे दिल्ली समझ रहे हो वह दिल्ली तो है नहीं। पर इसका क्या रोना, हम कोई दिल्ली आने के लिए तो दिल्ली आए नहीं, और जो दिल्ली आने के लिए दिल्ली आए वही कौन सा पहुंच गए दिल्ली। दूसरी कविता का शीर्षक है गऊ जैसी लड़कियां। अब भी लड़कियां गऊ जैसी होती हैं, हर बात में हाँ कहने वाली, मौन रहकर सब कुछ सह लेने वाली, किसी भी खूंटे से चुपचाप बंध जाने वाली। हमारी संस्कृति में सुशील और संस्कारी कन्याओं के यही सब गुण बताए गए हैं। गऊ जैसी लड़कियों के माँ बाप गर्व से बताते थे कि उनकी बेटी गऊ जैसी है। वे निश्चिंत रहते थे कि उनकी नाक हमेशा ऊंची रहेगी, क्योंकि उनकी बेटी गऊ जैसी है। वे गऊ जैसी लड़कियाँ इतनी सीधी थीं कि समझ नहीं पाती थीं कि उनके घर के ठीक बगल का एक इज्जतदार आदमी, जिसे वह रोज़ प्रणाम करती हैं, असल में एक शिकारी है। वे तो यह भी नहीं भाव पाती थी कि अपने पति की नज़र में वे दुधारू नहीं हैं। उनकी दुनिया इतनी छोटी थी कि उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि गायों की रक्षा के लिए गली गली में बन रही हैं सेनाएं। जब उनमें से किसी के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता, या किसी पर किरासन तेल उड़ेला जाता, या किसी के कपड़े फाड़े जाते, तब वह गाय की तरह रंभाती थी, बस थोड़ी देर के लिए। गौरक्षकों तक नहीं पहुंच पाती थी उसकी आवाज़। उनकी तीसरी कविता का शीर्षक है कहावतें। कितना हंसोड़ रहा होगा वह आदमी जिसने एक ऊंट के साथ मजाक किया होगा, उसके मुंह में जीरे का एक दाना रखकर। सचमुच बड़ा फक्कड़ रहा होगा वह, बड़ा ही मस्त मोला, जिसने छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल मले जाने की मज़ेदार बात सोची होगी। ज़रा कहावतों के जन्म के बारे में सोचो। किसने कहा होगा पहली बार कि अधजल गगरी छलकत जाए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। वे हमारे पूर्वज थे जिन्हें कवि नहीं बनना था, नहीं होना था उन्हें प्रसिद्ध, इसलिए कहावतों में उन्होंने अपना नाम नहीं जोड़ा। वे जिंदगी के कटु आलोचक रहे होंगे, गुलमोहर की लाल हंसी हंसने वाले, समय को गेंद की तरह उछालने वाले, अपनी नींद और अपने आराम के बारे में खुद फैसले लेने वाले यार बाश लोग रहे होंगे वे। उनमें से कोई तेज तर्रार भड़भूंजा रहा होगा जिसने पहली बार महसूस किया होगा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। कोई उत्साही मल्लाह रहा होगा जिसने निष्कर्ष निकाला, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। क्या तुम उन अनाम पूर्वजों के साहस की तपिश महसूस कर सकते हो? ज़रा सोचो उस दिन क्या हुआ होगा जब उन्हीं में से किसी ने एक ढोंगी की ओर उंगली उठाकर कहा होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। उन अनाम पूर्वजों ने डरना तो शायद सीखा ही नहीं होगा। जब मौत भी उनके सिरहाने आ खड़ी होती होगी तो वे उसे चढ़ाते होंगे रंगा सियार कहकर। अब नहीं दिखते वैसे मस्त मौला, पक्कड़ और साहसी लोग, नहीं रहे जिंदगी के कटुआलोचक, और इसीलिए दम तोड़ रही हैं कहावतें। तुम्हें अपनी भाषा की कितनी कहावतें याद हैं। यह समझदार लोगों का दौर है, यह चालाक कवियों का दौर है, यह प्रायोजित शब्दों का दौर है। काश इस दौर के बारे में मैं एक सटीक कहावत कह पाता।
आप सुन रहे थे आज संजय कुंदन की कविताएं। अगली दफ़े फिर हम मिलेंगे किसी और रचनाकार के साथ। तब तक के लिए पूजा प्रसाद को दें इजाज़त। नमस्कार।